नमस्कार भारत, तारीख 19 जनवरी दिन बृहस्पतिवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। ओबामा ने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप को आगाह किया कि वो रूस पर लगे प्रतिबंधों को तब तक न हटाए जब तक वो अपनी नीतियां नहीं बदलता।
I think it is in America's interest and the world's interest that we have a constructive relationship with Russia.
उत्तर प्रदेश में टिकट वितरण से नाराज बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, पुतले फूके। दुनिया जहान में बताएंगे कि जापान के सम्राट को लोग आखिरकार इतना सम्मान व प्यार क्यों देते हैं। कार्यक्रम में होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन थोड़ा सा ठहरेंगे और सुनेंगे मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, अमर शर्मा से। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया है कि वे रूस पर लगे प्रतिबंधों को ना हटाएं जब तक कि रूस अपने किए गए कामों को सुधार न दे, जिसे उन्होंने यूक्रेन की संप्रभुता का अतिक्रमण करार दिया। व्हाइट हाउस में 8 साल बिताने के बाद राष्ट्रपति के रूप में अपने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबामा ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन ने रूस और अमरीका के बीच एक शत्रुतापूर्ण संबंध कायम किया है जो शीत युद्ध के दिनों की याद ताज़ा करता है। उन्होंने लाखों गोपनीय सूचनाओं को लीक करने वाली सैनिक चेल्सी मैनिंग की जेल की सज़ा को कम करने के खुद के फैसले का भी बचाव किया। ओबामा ने कहा कि वे बुनियादी मूल्यों को बचाने के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। ट्रंप को कल राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। सेनेगल की सेना का कहना है कि राष्ट्रपति याया जमेह के पिछले महीने हुए चुनाव में जीते हुए उम्मीदवार को आधी रात सत्ता हस्तांतरण करने की समय सीमा खत्म हो गई है। द गाम्बिया की सीमा पर पहुंच चुकी सेनेगल की सेना का कहना है कि पश्चिमी अफ्रीकी सैन्य बल द गाम्बिया में घुसकर सत्ता हस्तांतरण कराने के लिए तैयार हैं। नाइजीरिया ने इस इलाके में अपने लड़ाकू विमान भेज दिए हैं और कहा है कि उनकी नौसेना का जहाज गाम्बिया पहुंचने के रास्ते में है। मॉरिशस के राष्ट्रपति मोहम्मद औद अब्दुल अजीज गाम्बिया में मौजूद हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति एडम बैरो को सत्ता सौंपने के लिए जमेह को राजी करने के लिए इसे आखिरी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। नाइजीरियाई राष्ट्रपति के आधिकारिक प्रवक्ता गारा शेहू ने बीबीसी को बताया कि जैसे ही एडम बैरो शपथ लेते हैं और सहयोग की अपील करते हैं तो नाइजीरियाई सेना हस्तक्षेप के लिए तैयार है।
Our priority as we speak now is the safety of Nigerians in the Gambia and other West Africans.
अभी हमारी प्राथमिकता द गाम्बिया में रह रहे नाइजीरियाई और दूसरे पश्चिमी अफ्रीकियों की सुरक्षा है। क्या कोई सैन्य गतिविधि होने जा रही है, यह पूरी तरह से नए राष्ट्रपति एडम बैरो पर निर्भर करेगा जो कार्यभार संभालेंगे। गारबा शेहू के शब्द। न्यूयॉर्क में सेनेगल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की है कि वो पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्रीय संगठन इकोवास को अधिकृत करे कि वो सत्ता हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा सकें। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दुनिया का तापमान पिछले 12 महीनों में नई ऊंचाई पर पहुंचा है और ये लगातार तीसरे साल बढ़कर दर्ज किया गया है। नासा और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर किए गए संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन में पता चला है कि औद्योगिक काल से पहले की तुलना में पूरी दुनिया का औसत तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। इसकी वजह से भारत में अप्रत्याशित लू चली और आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ तेजी से पिघल रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी वजह मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना है और प्राकृतिक घटना एल नीनो है जिससे प्रशांत महासागर से गर्मी बाहर निकली। इस सदी में ऐसे 16 साल थे जब रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी। डावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ग्रीन पीस की कार्यकारी निदेशक जेनिफर मॉर्गन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर और कदम उठाए जाने की जरूरत है।
The fact that global temperatures are now at record highs again 3 years in a row is unprecedented.
विश्व का तापमान रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई को छू रहा है। लगातार 3 सालों तक ये बढ़ना अप्रत्याशित है। हमने 115,000 सालों में तापमान को इस स्तर पर बढ़ते हुए नहीं देखा है, इसलिए अभी तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। ग्रीन पीस का कहना है कि व्यापार जगत को इस मुद्दे को सबसे पहले रखना पड़ेगा। सरकारों को कदम उठाना होगा और उन लोगों की बात सुननी होगी जो इस दूसरी तरह का भविष्य बनाना चाहते हैं। जेनिफर मॉर्गन के शब्द। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत, और आज मैं हूं मोहनलाल शर्मा। व्हाइट हाउस में 8 साल बिताने के बाद राष्ट्रपति के रूप में ओबामा अपने आखिरी संवाददाता सम्मेलन को उन्होंने आज संबोधित किया। निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप को कल यानी कि शुक्रवार को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जानी है। ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया कि वो रूस पर लगे प्रतिबंधों को न हटाएं तब तक जब तक कि रूस यूक्रेन की संप्रभुता का अतिक्रमण नहीं रोकता। उन्होंने कहा,
I think it is in America's interest and the world's interest that we have a constructive relationship with Russia.
बराक ओबामा कह रहे थे कि ये अमेरिका और दुनिया के हित में है कि रूस के साथ हमारे संबंध सकारात्मक हों। मेरे कार्यकाल में भी मेरा यही रुख रहा। पुतिन के दोबारा सत्ता संभालने के बाद अमेरिका के खिलाफ बढ़ती बयानबाजियों से शीत युद्ध के समय के संबंधों जैसी शत्रुता का भाव लौट आया, जिसकी वजह से आपसी संबंध बिगड़े हैं। बराक ओबामा के शब्द। ओबामा ने लाखों गोपनीय सूचना लीक करने वाली सैनिक चेल्सी मैनिंग की सजा को कम करने के फैसले का बचाव किया। अब से कुछ देर पहले मैंने वॉशिंगटन में बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय से पूछा, ओबामा ने चेल्सी मैनिंग पर क्या तर्क दिए?
देखिए, उन्होंने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि चेल्सी मैनिंग पहले ही काफी सख्त सजा काट चुकी हैं, इसलिए 35 साल की सजा में कटौती ये संदेश नहीं देता है कि अगर कोई और भी सरकारी गुप्त जानकारी लीक करता है तो उसके साथ नरमी बरती जाएगी। चेल्सी मैनिंग लगभग 7 साल की सजा काट चुकी है और बराक ओबामा ने यह भी कहा कि उन्हें ये सोचकर अच्छा लग रहा है कि उनके साथ इंसाफ हुआ। और देखा जाए तो ओबामा के शासनकाल में जो विसल ब्लोअर्स हैं या सरकारी जानकारी लीक करने वाले हैं उनके खिलाफ खासी सख्ती बरती गई है, लेकिन इस फैसले के बाद से जो रिपब्लिकन्स हैं, कई वरिष्ठ सेनेटर हैं, वो काफी उनकी आलोचना कर रहे हैं और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक शब्द इस्तेमाल किया है कि ये देश के साथ दगाबाजी है।
ब्रजेश, एक राष्ट्रपति के रूप में बराक ओबामा की ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही उन्होंने?
देखिए, उन्होंने लगभग हर जो इस वक्त दुनिया में जो विषय है, रूस की बात हो, मध्यपूर की बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो, सब चीजों की बात की, लेकिन जो एक खास पैगाम निकला उन्होंने एक तरह से स्पष्ट किया है कि पद छोड़ने के बाद अगर उन्हें लगा कि अमेरिका के जो मूल्य हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, वो अगर खतरे में है तो वो चुप नहीं बैठने वाले। उन्होंने कहा कि वो फिलहाल राजनीति से दूर रहना चाहेंगे, लेकिन अगर कोई समस्या इतनी अहम है कि उन्हें रिटायरमेंट से बाहर आना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। आपको याद होगा कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जब सत्ता छोड़ी थी उसके बाद वो पब्लिक लाइफ से बिल्कुल कट से गए थे, लेकिन ओबामा ने कहा है कि फिलहाल उनका वो इरादा नहीं है। यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है कि ओबामा ऐसे वक्त पर पद छोड़ रहे हैं जब उनकी लोकप्रियता आसमान चूम रही है, लेकिन 8 साल में उन्होंने जो हासिल किया है वो विरासत कह सकते हैं आपकी एक तरह से खतरे में है। ट्रंप के पद ग्रहण करने से पहले ही रिपब्लिकन बहुमत वाली कांग्रेस जो है स्वास्थ्य से जुड़े कानून ओबामा केयर को खत्म करने की मुहिम में जुट गई है और उनके और भी कई जो जैसे ईरान के साथ समझौता हुआ या फिर जो मेक्सिको वगैरह देशों से बिना कागजात के जो लोग आए उनको जो माफी दी गई, इन सब बातों को फिर से खत्म करने की बात हो रही है। राष्ट्रपति ओबामा ने यह कहा कि वो थोड़े समय स्पॉटलाइट से बाहर रहकर कुछ लिखना चाहेंगे और अपनी बेटियों के साथ साथ वक्त गुजारना चाहेंगे, लेकिन कई डेमोक्रेट्स हैं जो ये चाहते हैं कि ओबामा राजनीति में सक्रिय रहें और उनकी मदद करें फिर से बहुमत हासिल करने में।
बराक ओबामा ने राष्ट्रपति के रूप में अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्या कुछ कहा, बता रहे थे ब्रजेश उपाध्याय। चर्चा भारत की करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रही भारतीय जनता पार्टी में टिकटों की पहली सूची आने के बाद से ही मानो भूचाल सा आ गया है। टिकट वितरण से नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कई जगह नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की, पुतले फूके। वहीं राजनीति में परिवारवाद का विरोध करने के बावजूद कई नेताओं के रिश्तेदारों और दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को टिकट देने को लेकर पार्टी में जबरदस्त विरोध हो रहा है। और जानकारी के साथ हैं लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही टिकट बांटने की प्रक्रिया में फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। लंबे इंतजार के बाद उसने 149 सीटों पर पिछले दिनों उम्मीदवार घोषित किए, लेकिन तमाम एहतियात के बावजूद उसे जगह जगह कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर पुराने लोगों के टिकट कटने की वजह से बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं और केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। बरेली, मेरठ, नोएडा जैसी कई जगहों से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ नारेबाजी हुई और पुतले फूंके गए। यही नहीं, लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय पर तो बुधवार को एक व्यक्ति ने आत्मदाह की भी कोशिश की और बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाया गया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि दूसरी पार्टियों से आने वालों को टिकट दिया गया जबकि पार्टी के लोगों को नजरअंदाज किया गया, लेकिन पार्टी के नेता ऐसा नहीं मानते। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा कहते हैं,
देखिए ये क्योंकि भाजपा की उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है तो कार्यकर्ता की अपेक्षा तो रहती है और कि उनको टिकट मिले, लेकिन चयन तो एक ही व्यक्ति का होता है तो एक दो दिन रहता है लेकिन सब फिर कार्यकर्ता जुट जाते हैं। ये किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है, विचार का चुनाव है। जिनको भी टिकट दिया गया है मेरिट के हिसाब से दिया गया है, एलिजिबिलिटी के फैक्टर पे दिया गया है। परिवारवाद वगैरह तो हमारे यहाँ है नहीं ज्यादा, तो निश्चित रूप से लोगों का झुकाव पार्टी की तरफ है तो लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए पार्टी में, और जो भाजपा में आता है भाजपा का कार्यकर्ता है, बाहरी का है वो।
बताया जा रहा है कि पहली लिस्ट में कार्यकर्ताओं की नाराजगी के चलते ही दूसरी लिस्ट के लिए होने वाली चुनाव समिति की बैठक को भी स्थगित कर दिया गया है। वहीं दूसरे दलों से आने वाले नेताओं में भी पहली लिस्ट के बाद काफी बेचैनी है। खासकर बहुजन समाज पार्टी से आए स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर दो दिन से अटकलें लग रही हैं कि वो कभी भी बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हालांकि इस पर कुछ भी बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन जानकार बताते हैं कि वो दूसरी लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार सुभाष मिश्र कहते हैं,
मौर्य ने पहले ही गलती कर दी थी। उस हिसाब से अगर देखा जाए बहुजन समाज पार्टी ने उनको एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन दी थी, लीडर पोजीशन बनाया था, कैबिनेट पार्टी का फेस थे उत्तर प्रदेश में, मायावती से नाराज हो गए, भारतीय जनता पार्टी चले गए। लेकिन वहां पर जाने के बाद स्वाभाविक रूप से उस तरह से उनको नहीं मिल रहा है आदर सत्कार जैसा उनको बीएसपी में मिलता था। दूसरा ये है कि जैसा ही बताया जाता है उनकी डील जो अविश्वास से ये हुई थी कि साहब वो भी उनको भी टिकट मिलेगा और कुंभे को मिलेगा, यानी बेटा बेटी और जो समर्थक है, 10-12 टिकट की ऐसी शायद बात कही गई थी मौर्य को कि हम देंगे, लेकिन अब शायद खाली उनके अलावा किसी को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे रही है। उनके पास बहुत कम ऑप्शन बचे हैं कि या तो समाजवादी पार्टी वापस फिर से जाने के लिए सोचे जैसे शुरुआत भी थी या कांग्रेस जाने की सोचे।
हालांकि सुभाष मिश्र का कहना है कि पार्टी में जो नाराजगी है वो स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आगे भी जारी रहेगी।
भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार है और थोड़ा सा इस बार चुनाव लड़ रही है तो उसमें टिकट भी मारामारी ज्यादा है, और किसी पार्टी जब होता है तो फर्स्ट राउंड में तो इस तरह के आपस में लड़ाई झगड़ा या टिकट मांगने वालों का दबाव इस तरह रहता है, उसी के कारण ऐसा लग रहा है, लेकिन ये है कि कोई परमानेंटली ऐसा रहे ऐसा मुश्किल है।
बहरहाल पार्टी ने अभी सिर्फ 149 सीटों पर ही उम्मीदवार घोषित किए हैं जबकि अभी 250 से ज्यादा सीटें बची हैं। विरोध सबसे ज्यादा बाहरी लोगों को टिकट दिए जाने का हो रहा है, लेकिन बाहरी लोगों का पार्टी में आना भी अभी जारी है। अब देखना यह है कि पार्टी के भीतरी लोग बड़े नेताओं की तरह ही बाहरी लोगों को अपना उम्मीदवार स्वीकार कर लेते हैं या फिर कोई और गुल खिलाते हैं। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
तो बीजेपी में पहली सूची आने के बाद मानो भूचाल सा आ गया है। उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की बात लगभग साफ हो गई है, बस घोषणा भर की देर है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को ये ज्यादा रास नहीं आ रहा है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बावजूद कांग्रेस यदि गठबंधन कर रही है तो उसे इसमें क्या फायदा दिख रहा है? यही सवाल पूछा हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रमोद तिवारी।
सवाल एक पॉलिटिकल पार्टी के फायदे का नहीं, सवाल विचारों का है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश की अर्थव्यवस्था चौपट की है उसके खिलाफ सबको एक साझा शक्ति बन के उभरना है, और जो ये डिक्टेटरशिप है इस डिक्टेटरशिप को रोकने के लिए एक दूसरे के करीब आने की आवश्यकता है, शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ अलायंस के पीछे यही नज़रिया होगा।
अगर गठबंधन फाइनल हो जाता है जो कि ऑलमोस्ट हो चुका है तो पूरे देश में या ख़ासतौर पे जो नॉर्दर्न इंडिया है इसमें ये मैसेज नहीं जाएगा कि हर राज्य में कांग्रेस जो है वो रीजनल पार्टीज़ की बी टीम बनकर के तैयार हो रही है?
जो राष्ट्रीय टीम है उसमें सापा ने हमारे साथ हमको समर्थन दिया था, एक बार, दो बार, तीन बार, जिससे कोई ए बी टीम नहीं बनती है। जो जहाँ पर बड़ा है, ज़्यादा संख्या में है, उसके साथ जुड़कर ही महाशक्ति बना जा सकता है। अब पिछले 10-15 साल से सापा बहुत ज़रूरत केंद्र में सहायता देती रहती है, समर्थन देती रहती है, तो कोई किसी के भी टीम नहीं होता बल्कि एक दूसरे के सहयोगी होते हैं।
ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी। रुख उत्तराखंड का करते हैं। उत्तराखंड में अभूतपूर्व दल बदल के बीच असंतोष और बगावत से कांग्रेस व बीजेपी जैसे प्रमुख राजनीतिक दल जूझ रहे हैं, लेकिन इस दल बदल के बीच सबसे नाटकीय रहा पुराने कांग्रेसी एनडी तिवारी का परिवार समेत बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलना। तिवारी ने पूरी जिंदगी कांग्रेस की राजनीति की, लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव में वो अपने बेटे राहुल शिखर के टिकट को मांगने के लिए जोर लगाते रहे। पहले कांग्रेस से बात की, वहां संकेत नहीं मिले तो बीजेपी का दामन थाम लिया। 91 साल के तिवारी की इस कोशिश से कांग्रेस को पता नहीं कितना नुकसान होगा, लेकिन बीमार और अशक्त तिवारी के लिए बीजेपी की चौखट तक पहुंचना निश्चित ही एक ऐसा अनुभव होगा जिसके लिए वो शायद अपनी मर्जी से कभी तैयार ना होते। उत्तराखंड की चुनावी खलबली पर देहरादून से शिव जोशी की रिपोर्ट।
एनडी तिवारी सपरिवार दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने गए। भले ही ये स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली, लेकिन अपनी पत्नी उज्ज्वला के साथ जाकर उन्होंने बेटे रोहित शेखर की बीजेपी की सदस्यता पर मोहर जरूर लगवा दी। कांग्रेसी विचारधारा के एक सबसे पुराने नेता का ये नया अवतार नहीं बल्कि बदले हालात की विवशता और पुत्र मोह का सरेंडर माना जा रहा है। एनडी तिवारी की राजनीति को करीब से देखने वाले लोगों का मानना है कि तिवारी के पास आखिर चारा भी क्या था। देहरादून के एक बुजुर्ग वोटर हरीश जोशी।
जन्मजात कांग्रेसी रहे, तब इतने पुराने आदमी ने भी पार्टी छोड़ के बीजेपी में आए, और इसका मतलब ये है इन्होंने भी रुख देख लिया। पुत्र को भी टिकट दिलाया गया।
2002 में उत्तराखंड की पहली निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री और पूरे 5 साल सरकार चला लेने में सफल रहे तिवारी इससे पहले 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे और एक समय प्रधानमंत्री पद के दावेदार तक बने। उत्तराखंड में 2007 के चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद तिवारी ने दिल्ली का फिर से रुख किया और वहां से आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भेजे गए। 2009 में सेक्स स्कैंडल में आरोपों से घिरे और इस्तीफा देकर वापस देहरादून लौट आए। इसी दौरान रोहित शेखर ने उनके खिलाफ मुकदमा लड़ा और सबूतों, साक्ष्यों और डीएनए जांच के बाद तिवारी उनके पिता घोषित हुए। तिवारी ने उन्हें बेटे और उनकी मां उज्ज्वला को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और फिर तिवारी की गतिविधि रोहित को राजनीति में लाने तक ही सीमित रह गई। पहले कांग्रेस में कोशिश की गई लेकिन बात नहीं बनी तो बीजेपी के दरवाजे पर दस्तक दी गई। वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत।
तिवारी जी का अपने शरीर पर बस नहीं था, उसका कंट्रोल खो चुके थे कि बहुत पहले उनका भांजा करता रहा, उनके नाम से किस्म किस्म के रोज उठपटांग को बयान जारी कर देता था। उसके मुक्ति मिली, अब उनको ये था कि उनकी पत्नी आ गई, बेटा आ गया, अपने लोग आ गए उनकी।
बीजेपी नेता मानते हैं कि तिवारी के कदम से उनके कथित विशाल जनाधार का फायदा पार्टी को चुनावों में मिलेगा। एक समय तिवारी कैबिनेट का हिस्सा रहे, फिर कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए नेता हरक सिंह रावत।
2002 से लेकर 2007 तक जब तिवारी जी चीफ मिनिस्टर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी से 5,000 करोड़ रुपया उत्तराखंड की सड़कों और गांवों के बिजली के लिए लाए थे। जो विकास दिखाई देता है उसमें तिवारी जी का बहुत बड़ा योगदान है।
एनडी तिवारी की इस हलचल के बीच उत्तराखंड में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान है। बीजेपी 64 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है, पार्टी में असंतोष चरम पर है और उधर कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार उसके दावेदारों को है। बीजेपी में तो परिवारवाद का बोलबाला रहा, अब कांग्रेस की संभवतः आज आने वाली लिस्ट बताएगी कि उसका राजनीतिक शुचिता का दावा कितना असली है। फिलहाल तो लगता है कि उत्तराखंड कुनबे की राजनीति में घिरा हुआ है। शिव जोशी, बीबीसी देहरादून।
इस रिपोर्ट के बाद एक महत्वपूर्ण सूचना। क्या आप भी बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम अपने रेडियो पर साफ नहीं सुन पा रहे हैं? हमें लिख भेजिए कि आप कहाँ रहते हैं और कौन से प्रसारण सुनने में परेशानी होती है। हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर ईमेल भेजना चाहें तो पता नोट करें, hindi.letters@bbc.co.uk। अपनी चिट्ठी के ऊपर रेडियो प्रसारण लिखना कतई न भूलें। और अब कार्यक्रम में अखबार के पन्ने पलट लेते हैं। अमर शर्मा, क्या कह रहे हैं आज के अखबार?
जी, अलग अलग अखबारों ने अलग अलग हेडलाइन बनाई है, लेकिन हिंदी के तमाम अखबारों ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने जो जांच शुरू की है इसको अपनी पहले पन्ने पर इसको जगह दी है और इस पर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू अखबार ने नोटबंदी के बारे में आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के बयान को अपनी पहली खबर बनाया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि उर्जित पटेल ने वित्तीय मामलों पर संसद की स्थायी समिति को इस बात की जानकारी नहीं दी कि नोटबंदी के बाद प्रभावित हुई बैंकिंग व्यवस्था कब तक सामान्य हो जाएगी, और ना ही ये बता पाए वो कि नोटबंदी के बाद रद्द किए गए पुराने नोट कितने जमा हुए हैं बैंक में।
अपने श्रोताओं को बता दें कि इसी से जुड़ी खबर हमारे bbchindi.com पर भी है कि उनसे कितने कठिन सवाल पूछे गए।
जी, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी जो पहली खबर बनाया है वो इससे ठीक अलग है कि उर्जित पटेल ने संसदीय समिति को यह बताया है कि नोटबंदी पर चर्चा पिछले साल जनवरी से जारी थी, लेकिन ये बयान उनका पहले दिए गए लिखित बयान से उलट है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस अखबार की पहली खबर जल्लिकट्टू के मामले पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं तमिलनाडु में उसको लेकर है, और इस मामले में सीएम पनीरसेल्वम आज पीएम से मिलेंगे और कल मरीना बीच में चेन्नई के हजारों लोग वहां जमा हुए। आप देख सकते हैं अखबार की कितनी बड़ी यहां पर लोग जमा हुए हैं और आज, और चूंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रतिबंधित कर दिया जल्लिकट्टू खेल को, तो वो चाहते हैं कि इस पर अध्यादेश लाएं। या आपको एक खबर और बताएं कि टाइम्स ऑफ इंडिया में जो खबर छपी है कि वायु प्रदूषण से 81,000 लोग दिल्ली और मुंबई में 2015 में मारे गए हैं और इससे अर्थव्यवस्था पर 70,000 करोड़ रुपए का इससे नुकसान हुआ।
ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया अमर शर्मा आपका।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5,875, 7,430, 9,560, 11,995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। जापान के सम्राट ने समय से पूर्व गद्दी छोड़ने का मन बनाया है। सरकार ने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए इसके लिए कानून में बदलाव करने की तैयारी की है। 2000 साल पुराने राजवंश के इतिहास में ये दूसरी बार होगा जब राजा मृत्यु के पूर्व गद्दी छोड़ेंगे। देश में कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्या है इस विरोध की वजह और राजनीति से दूर रहने के बाद भी जापान के सम्राट को वहां के लोग इतना सम्मान क्यों देते हैं? इस बार दुनिया जहान में निखिल रंजन ने यही जानने की कोशिश की है।
दुनिया जहान। उगते सूरज के देश में राजवंश को सूर्य का ही वंशज माना जाता है। यहां सूरज को देवी के रूप में पूजने की परंपरा है और नाम है अमेतिरासु। वर्तमान राजा का वंश यहीं से शुरू माना गया है। करीब 2000 सालों से राजशाही का नेतृत्व करने वाला ये दुनिया का इकलौता राजवंश है जिसके राजा को सम्राट का दर्जा हासिल है। जापान में करीब आधी सदी का लोकतंत्र बीत जाने के बाद भी राजा के लिए लोगों के दिल में अपार श्रद्धा है और सूर्यवंशी होने के नाते उसे ईश्वर से सीधा जुड़ा माना गया है। जापान में भारत के राजदूत रहे आफताब सेठ।
एक तो ये मजहब से भी है इनका ताल्लुक है, शिंतो जिसको कहते हैं ना, जिनका अपना मजहब है, तो उस शिंतो धर्म के सबसे ऊंचे दर्जे के जो उसको प्रीस्ट कहिए या पंडित कहिए, वो हैं सम्राट। और ऐसी हैं उनके सेरेमनीज कुछ खास जो कि सम्राट ही जानता है, और सम्राट वो सिखाते हैं सिर्फ राजकुमार साहब को जो क्राउन प्रिंस हैं। एक तो ये है, हर जापानी की शादी जब होती है वो शिंतो सिस्टम से होती है, तो शिंतो को हर जापानीज मानता है और शिंतो के जो मंदिर कहिए उनको या टेंपल कहिए या जो भी कहिए, वो हर छोटे छोटे इलाके में आप इनको देख सकते हैं। सुंदर सुंदर श्राइन्स होते हैं इनके और उसमें मूर्तियां हैं, गणेश, सरस्वती, कई इंडिया के हैं गॉड जो कि आप शिंतो श्राइन में देख सकते हैं कईयों में। दूसरा, सम्राट का जो शुरुआत है वो कहते हैं कि सन गॉडेस थी अमातेरासु ओमिकामी, तो ये उनसे डिसेंडेड है, जैसे हमारे यहाँ सूर्य वंश है, तो ये इनकी बिलीफ है कि ये मोनार्की और ये जो डायनेस्टी है ये अमातेरासु ओमिकामी से डायरेक्ट डिसेंडेंट है, तो ये सेमी डिवाइन स्टेटस है उनका।
दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर अमेरिका की सत्ता कायम होने के बाद लोकतंत्र ने अपने पांव तो जमा लिए लेकिन देश के राजा को सम्मान मिलता रहा। आज सत्ता और राजनीति में कोई भूमिका न होने के बाद भी उनका स्थान देश में सबसे ऊपर है और हर जापानी खुद को सम्राट से जुड़ा हुआ मानता है। देश के सम्राटों ने खुद को जनता से जोड़े रखने के लिए लगातार प्रयत्न किया है और ये जब तब सामने आता रहता है।
इनकी ये परंपरा है, इस खानदान में सेवा, लोगों की सर्विस, अगर कहीं भी भूकंप हुआ, कहीं आग बड़ी लगी, कहीं कुछ डिजास्टर हुआ, जैसे फुकुशिमा में एक न्यूक्लियर प्लांट खत्म हुआ, तो पहले लोग वहां पहुंचेंगे, ये सम्राट और उनकी बीवी, चाहे उनको पता था कि यहाँ खतरा है, न्यूक्लियर रेडिएशन था फुकुशिमा के चारों तरफ, लेकिन वो पहुंच गए अपने लोगों से मिलने को, उनको सहारा देने को, वो पहुंच गए। 1995 में कोबे में बड़ा भारी भूकंप, कई सौ लोग मरे, पहले लोग वहां पहुंचे, सम्राट और उनकी बीवी। तो कि जब भी कोई तकलीफ हो जनता को, कहीं भी तकलीफ हो, तो पहले सहारा देने, सपोर्ट देने पहले लोग हैं एम्परर और एम्प्रेस। तो ये एक और वजह है जिसके लिए लोग इनको बहुत ही मानते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं।
उन्नीस सौ 89 में अपने पिता से विरासत में राजा की गद्दी हासिल करने वाले सम्राट अकीहितो इस वंश के 125वें राजा हैं। उन्होंने बीते साल बढ़ती उम्र का हवाला देकर समय से पहले गद्दी छोड़ने के संकेत दिए तो हलचल मच गई। जापान में सम्राट अपनी मर्जी से सत्ता छोड़ सकें ऐसा कोई कानून नहीं। जापान की कियो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुकेश विलियम्स।
जापानी कानून जो है वो सम्राट को अपना सिंहासन त्याग देने की इजाजत नहीं देता है, तो इसके लिए कानून को बदलना होगा। अब जो अकीहितो हैं उनकी हार्ट सर्जरी हुई है, प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, तो लोगों को जो राइट विंग है उनको समझौता करना होगा इस बात से कि भाई लोग तो कहते हैं कि हाँ भाई हमारी समझ में आ रही है ये बात कि सम्राट नहीं कर पा रहे और कोई वजह नहीं है, तो जो उनके लड़का है जो क्राउन प्रिंस है नारुहितो वो उनको लाना चाह रहे हैं। शिंजो आबे जो राइट विंग को एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी उन्होंने भी कमेटी लगाई है कि भाई 2019 चाह रहे हैं कि जनवरी पहली को जो नया कैलेंडर है वो लाया जाए। इससे क्या होगा, लोगों को समस्या कम होगी, लोग परेशान कम होंगे, उधम कम होगा, क्योंकि न्यू ईयर टाइम जापान में ऐसा होता है कि 3 से 5 दिन सब कुछ बंद होता है, तो अगर वो टाइम लाया जाए तो एक तो जो एक साल से दूसरे साल में मूवमेंट है वो अच्छी हो जाएगी और लोग जो है जो कुछ थोड़े बहुत जो कि नहीं चाहते हैं वो थोड़ा सा कम रहे।
देश में दक्षिणपंथी लोगों का एक बड़ा गुट है जो सम्राट के इस फैसले से खुश नहीं है। उन्होंने ये मांग भी रखी है कि कानून में बदलाव सिर्फ एक बार के लिए ही हो, हमेशा के लिए इसे रिवाज न बना दिया जाए। दक्षिणपंथी रिवाजों को बनाए रखना चाहते हैं। सम्राट से जुड़े कानून में बदलाव के लिए 2006 में भी बात उठी थी, जब कोई पुरुष वारिस न होने की वजह से राजकुमारी को इसका हकदार बनाने की जरूरत आ पड़ी थी, लेकिन उसी समय राजकुमार के जन्म ने इस समस्या से निजात दिला दी। दक्षिणपंथियों ने उस वक्त भी बदलाव का विरोध किया था। उन्हें आशंका है कि बदलावों ने अगर अपनी जगह बनानी शुरू कर दी तो कहीं सम्राट इतिहास के पन्नों में ना सिमट जाएं। आफताब सेठ।
राइट विंग को ये है कि हमें परंपरा को ऐसी रखना है जैसे था 2000 साल से और उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की कोशिश कर रहे थे ताकि क्राउन प्रिंस की बेटी उसके बाद आए, तो ये राइट विंग बड़े खिलाफ थे। कैसे हो सकता है, लड़की कैसे आ सकती है।
सहमति बनने के बाद जनवरी 2019 में सम्राट अकीहितो की विदाई हो जाएगी और फिर उनके पुत्र नारुहितो को इस गद्दी पर बिठाया जाएगा। नारुहितो सार्वजनिक रूप से अब तक किसी बड़ी भूमिका में नजर नहीं आए हैं, लेकिन ब्रिटेन की महारानी से उनकी मुलाकात का उन पर काफी असर माना जाता है। इतिहास की पढ़ाई करने वाले नारुहितो पर अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। दुनिया में अब राजशाही इतिहास के पन्नों और परंपराओं में ही ज्यादा नजर आती है, लेकिन फिर भी कुछ देशों ने इसे अपने वर्तमान का हिस्सा बनाए रखा है। जापान भी अपनी वंश परंपरा के जरिए इसे कायम रखने की कोशिश में है। निखिल रंजन, BBC, दिल्ली।
और अब कार्यक्रम में सुनते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर से।
BBC समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया है कि वे रूस पर लगे प्रतिबंधों को ना हटाएं जब तक कि रूस अपने किए गए कामों को सुधार न दे, जिसे उन्होंने यूक्रेन की संप्रभुता का अतिक्रमण करार दिया। द गाम्बिया की सीमा पर पहुंच चुकी सेनेगल की सेना का कहना है कि पश्चिमी अफ्रीकी सैन्य बल द गाम्बिया में घुसकर सत्ता हस्तांतरण कराने के लिए तैयार हैं। दुनिया का तापमान पिछले 12 महीनों में नई ऊंचाई पर पहुंचा है और ये लगातार तीसरे साल बढ़कर दर्ज किया गया है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। शाम 7:30 बजे दिनभर कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को राजेश चौहान के साथ विदा दें। नमस्कार।